वसुतं देवं कंसचर्णमर्दनं
वसुदेवसुतं देवं कंसचर्णमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नयव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाय
यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं श्रीगम्यः
अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं श्रीगम्यः परित्राणाय साधुना परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
चन्द्रकर्म च मे दिव्य एवं य वेति तत्त्वतः
जन्म कर्म च मे दिव्य
एवं य वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयेति मामेति सर्जुन
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयेति मामेति सर्जुन राग भय क्रोध
मन्मया मामुपाश्रितः
वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा
मद्भावमागत
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
दो बात इस लेख में बता रहे हैं। एक तो आपस में प्रेम कैसे बढ़े और शोक कैसे दूर हो। सब में भगवत बुद्धि और प्रेम हो जाए तो बेड़ा पार है। सबके साथ हम लोगों को निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए। या तो ऐसा करो और या भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रेम करना चाहिए। या तो निष्काम भाव से प्रेम करें और या भगवान को प्रसन्न करने का भाव रखते हुए अगले को प्रसन्न करें। प्रसन्न करने का आपको एक बहुत पक्का और ठोस सूत्र बताते हैं, तरीका बताते हैं कि भगवान और महात्मा जनों को छोड़कर संसार में जितने प्राणी हैं, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे यक्ष राक्षस आदि हो, सब में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। तो किसी व्यक्ति को यदि प्रेम देना हो तो उसके गुणों का वर्णन करो, उसका दोष कभी मत बताओ। ये अपने जीवन में व्रत ही ले लेना चाहिए, किसी का दोष हम नहीं बताएं। तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, ऐसा नहीं, उसकी विशेषता बतानी चाहिए। किसी में अवगुण नहीं देखकर बल्कि गुण देखना चाहिए। हम किसी के गुणों का वर्णन करेंगे तो उसका हमारे में प्रेम होगा, हमारा उसके साथ प्रेम बढ़ेगा। परंतु एक बात को ध्यान में रखो कि सच्चे गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, झूठे बनावटी गुणों को बता बता करके नहीं। इससे झूठ का प्रचार होता है, इससे लाभ नहीं होगा। यदि कोई अपनी झूठी प्रशंसा से लाभ करना चाहे, उठाना चाहे, तो गलत रास्ते पर है। गुणों का गान करने से अच्छे पुरुष हैं, देवता हैं और नीचे लोग भी हैं, कोई भी है, सब खुश होते हैं। बदमाश आदमी भी गुणों का गान करने से खुश होता है, उसमें कोई न कोई तो गुण है ही। इसी प्रकार यदि हम किसी को मान देंगे तो भी वो खुश होगा। सबको मान देना चाहिए। दो खास बात बता रहे हैं, एक तो दूसरों की सच्ची प्रशंसा करना और एक उनको यथा योग्य मान देना। भगवान के नाम में कितनी बढ़िया बात आती है, अमानी मानद है। भगवान अमानी है लेकिन दूसरों को मान देते हैं। तो ये बात हमको भगवान से सीखनी चाहिए। कोई हमारा मान न करे तो परवाह मत करो। सावधान इसमें रहो कि हम दूसरों को मान देते हैं कि नहीं देते हैं। दूसरे का हम मान करेंगे तो हमारा अवश्य प्रेम बढ़ेगा, उसके साथ हमारा अवश्य प्रेम बढ़ेगा। तो सार बात हुई कि मान देने से, कीर्ति गान करने से और हित करने से प्रेम बढ़ता है। ये अकाट्य उपाय है। देवताओं को मान देंगे तो देवता खुश होंगे, इतना ही नहीं भगवान को मान देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। अरे और तो क्या कहे, यदि हम कुत्ते का भी मान करेंगे तो वो खुश हो जाएगा। आप करके देखिए, कोई कुत्ता है उसको पुचकारिए, मान करिए, बुलाइए, खुश हो जाएगा। और उसका तिरस्कार करे, अपमान करे, तो उसका भी चेहरा उदास हो जाएगा, निराश होकर चला जाएगा। तो मान बड़ाई से कुत्ता भी खुश, मान से कुत्ता भी खुश होता है, नीच और बदमाश आदमी भी खुश होता है, साधु संत भी खुश होते हैं, भगवान भी खुश होते हैं। तो मान से, आदर से, प्रिय वचन से ये सब प्रसन्न होते हैं, तो इसका मतलब ये सबको प्रसन्न करने का उपाय है। परिवार में भी रहो तो वहां सबका मान रखो और सबके गुणों की प्रशंसा करो, किसी को उलाहना मत दो। जब सारा संसार भगवान की प्रजा है तो आपके परिवार के सदस्य तो साक्षात भगवान के रूप में ही तो आए हैं। ये आपकी अपनी आत्मा ही है, ऐसा समझकर प्रेम करो। ये सारा संसार भगवान का संकल्प है। जैसे हम मन में जो कुछ मनोराज्य बनाते हैं वो हम ही तो हैं, दूसरा थोड़ा ही है। ऐसे ही ये परमात्मा का संकल्प है सारा संसार, वो परमात्मा से भिन्न थोड़ा ही है। रामचरितमानस में लिखा, सो अनान्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेठ जी इसलिए मैं बोलते थे दोहे को। फिर आगे बोलते, सियावर रामचंद्र जी की जय, ऐसा बोलते थे। चराचर भगवान का स्वरूप है, भगवान स्वरूप की राशि है, मैं उनका सेवक हूं। इस प्रकार जिसकी मति हर समय अटल रहती है वो मेरा अनन्य भक्त है। यह उच्च कोटि का प्रेम है। ऐसा करने से अपनी आत्मा भी शुद्ध होती है और हमारे व्यवहार से अगले को शांति मिलती है। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं। आजकल किसी का जवान लड़का मर जाता है तो परिवार वालों को बहुत दुख होता है, किसी का जामाता मर जाता है, जामाता मान जवाई, जवाई मर जाता है तो भी बड़ा दुख होता है, किसी की स्त्री मर जाती है तो उसे बड़ा दुख होता है। इस प्रकार जितने हैं वे सभी मरेंगे, एक एक का दुख होगा, तो हम थोड़ा विचार पूर्वक एक ही दिन सब बात समझ लें तो दुख तो एक ही दिन हो जाए, फिर आगे दुख नहीं होगा। अतः दुख का अंत कर देना चाहिए। यदि मनुष्य का शरीर पाकर के भी हमने दुख का अंत नहीं किया तो फिर पशु पक्षियों के शरीर में और मानव शरीर में क्या अंतर रहा। मनुष्य तो वो है कि जिसमें कभी दुख पैदा ही ना हो। दुख पाने का काम तो पशु पक्षियों का, दूसरी योनियों का है। ये शरीर भगवान ने आपको दुखों का अंत तो करने के लिए दिया है। अब आप विचार करो, जो बात बीत गई उसके लिए शोक करना मूर्खता है। इसी बात को एक जगह कहा है, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। जो बात बीत गई उसका न तो शोक करता हूं और न मैं अपनी कोई किए हुए बात की बड़ाई करता हूं, तो मैं मूर्ख कैसे हुआ। माने भोजराज एक राजा थे, राजा भोज, राजा भोज थे, उनके दरबार में कालिदास जी आए, उज्जैनी के राजा थे वो। तो भोजराज ने कहा, आओ मूर्खराज, इतने बड़े कवि को मूर्खराज कह दिया, आओ मूर्खराज। तो वो खड़ा होकर कहने लगा कि खादन न गच्छामि हसन न जलपे, माने मैं भोजन करता हूं तो चलते फिरते नहीं करता हूं, यूं खा लिया फिर लिया है, बैठ करके भोजन करता हूं। खादन न गच्छामि हसन न जलपे, और जब कोई बात की जाए, जल्प माने बातचीत की जाए, उसमें हंसते नहीं, गंभीरता से उसमें उतरते हैं। ऐसे कई बातें मत है, खादन न गच्छामि हसन न जलपे, गतम वो तो बाद में है, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि अगतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणम भोज भवामि मूर्ख है, बताओ मैं मूर्ख कैसे हूं। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि, दो आदमी वहां बात करते हो, देखे भी दोनों आदमी बात कर रहे हैं, कोई जाके अपने भी खड़े हो गए, हाँ सा क्या बात है, तो ये मूर्खता की पहचान है, तो आपने किस कारण से मुझे मूर्ख का बताओ। तो राजा ने कहा भाई बहुत अच्छी शिक्षा दी आपने, है? अच्छा तो गतम ने सोचा, हमें खास बात है कि जो बात बीत गई उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, कोई मर गया तो मर गया, शोक करने से कोई लाभ नहीं होता है। घर में कोई मर जाता है तो सबके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, स्त्री का पति मर गया, पति की स्त्री मर गई, किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी की लड़की मर गई, किसी का लड़का मर गया, तो अंदर से ये समझो कि ये सब जन्मते मरते हैं। लड़की मर जाए तो समझो कि हमारी लड़की थी, उसका मौत के साथ विवाह करा दिया, गौना करा दिया, गौणों का ही है, गौना करा दिया, गौणों का ही है, अच्छा विवाद हो गया ना, उसका विवाह कर दिया, गौणा कर दिया, अच्छा ठीक, अच्छा ये बात है सर। अब हमको चिंता शोक क्यों करनी, हमारी गलती है। हमारा यदि जवान लड़का मर गया उसका हम शोक करें तो हमारी मूर्खता है। इस प्रकार का उत्तम विचार रखना चाहिए कि भगवान का विधान था, हमको शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें लड़की दी, लड़का दिया, हम उनकी सेवा करते हैं, शादी करते हैं, तो उन लोगों का पूर्व का कोई ऋण था, वो खाता बराबर हो गया, तो फिर भगवान ने कह दिया अभी अब चलो, तो अब वो बुला लिया। हमारे यहां वे रहते, उसकी अपेक्षा भगवान के वहां चले गए तो अच्छी बात है, हमारे यहां रहते तो और कोई ऋण आपस में एक दूसरे का चढ़ता उतरता क्या फायदा, भगवान के वहां जो सुख है वो हमारे पास थोड़े ही है। हम तो स्वार्थ के कारण से प्रेम करते हैं। देखो नरसिंह मेहता का लड़का मर गया तो वो नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, उछल उछल करके कहने लगे, वाह भगवान आपने हमारा बड़ा उपकार किया, मेरे लड़के को अपने पास बुला लिया, ऐसे वो आनंद में झूमने लगे। इसी प्रकार अपने घर में कोई पैदा हो तो उसका भी कोई भार नहीं समझना चाहिए कि भाई भगवान ने हमारे यहां भेजा है, भगवान का भेजा हुआ समझकर हमें सेवा करनी चाहिए। भगवान बड़े खुश होते हैं और जब वो यहां से विदा होता है तो उसको खूब अच्छे ढंग से प्रेम से विदा देनी चाहिए। चिंता क्यों करें, शोक क्यों करें। देखो यहां बहुत से भाई लोग आते हैं, आए हुए भाई लोगों की बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ हमको सेवा करनी चाहिए, और यदि चले जाए तो भाई उनको दूर तक पहुंचा करके, गाड़ी में पहुंचा करके प्रेम से अपने कमरे में लौट आना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हम लोगों को भगवान के हर विधान में ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि हमारे आनंद में कभी कमी न आए, क्योंकि हम तो यहां आनंद की लूट मचाने आए हैं। जो चले गए हमको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वे जहां जाएंगे वहां भगवान ने उनके लिए पहले से ही प्रबंध कर रखा है, हम क्यों चिंता करें। इसी प्रकार अपने घर में जो जन्म लेते हैं उनकी सेवा करो, और मर गए उनके लिए शोक नहीं करेंगे तो यह उनकी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। भगवान का सब जगह प्रबंध है। यहां से जो विदा होकर चले गए उनके लिए हम चिंता करते हैं, वो चिंता हमारे क्या काम की? चिंता तो उसकी भगवान को करनी है, और भगवान ही चिंता करते हैं और भगवान प्रबंध भी करते हैं। यदि आप मरे हुए का शोक करते हो तो कोई प्रबंध करते हो क्या? प्रबंध तो नहीं करते, न कर सकते, तो फिर शोक क्यों करो? आप पर जिम्मेदारी तो प्रबंध की है, प्रबंध आप कर नहीं सकते तो फिर शोक क्यों करो? बार बार ये विचार करो कि अपने को तो यही समझना चाहिए कि यहां से अधिक सुख वहां है, ऐसा सोचना चाहिए कि मरा हुआ प्राणी यहां से ज्यादा सुख अवस्था में है। शोक करो तो इस बात का करना चाहिए कि हमारे द्वारा उसकी खातिरी सेवा नहीं हो सकी, किंतु यहां से विदा होने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी भी क्या है? सब जगह उनकी खातिरी अधिक से अधिक होती रहती है, ये भगवान का प्रबंध है। शोक और चिंता को पास में फटकने नहीं देना चाहिए। अब इसी बात को मैं दूसरी दृष्टि से कहता हूं। जैसे कोई भाई हमारे यहां रुपयों की थैली रख जाए और कह जाए कि जी हम बद्रिकाश्रम, गंगोत्री, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग जा रहे हैं, ये रुपयों की थैली आप तिजोरी में रख लो, 5-10 दिन के बाद लौटकर वापस आता है तो कहता है कि साहब हम तीर्थ हो आए, लाओ हमारी थैली दो। यदि हम थैली देने में आपत्ति करते हैं तो हम चोर हैं। यदि हम थैली देने में आपत्ति करते हैं तो हम चोर हैं। अरे अमानत रूप में रखी हुई थैली उसको देने में आनाकानी करते हैं, ये अत्याचार है। और दे करके यदि पश्चाताप करते हैं कि अरे उसको दबा लेते तो बड़ा अच्छा था, क्यों दे दिया, ऐसा पश्चाताप करो तो ये महागलती है। बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि उसकी थैली हमारे पास रखी थी, तिजोरी में पड़ी थी, यदि कोई ले जाता तो काला मुंह हमारा होता, बड़ा अच्छा हुआ उसकी चीज उसको दे दी और हमारी इज्जत रह गई। ऐसे ही भगवान ने हमारे पास लड़का या लड़की रूप एक थैली दी अमानत के रूप में, और जब भगवान आकर वापिस ले जाते हैं तब हम दुख करते हैं। दुख किस बात का भाई? भगवान ने अमानत रखी थी और भगवान ले गए। आप विचार करो, आपकी लड़की आपके जमाई के साथ जब ससुराल रवाना होती है तो आप रोते हो क्या? बड़े आराम से भेजते हो। बल्कि लड़की रोती है, जाने में हिचकिचाहट करती है तो बेटा तुमको तो अब वहीं रहना पड़ेगा। रो क्यों? अब ये तुम इनकी हो गई तो इनके पास ही रहना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये हमारा लड़का लड़की जो मर गया वो भगवान के घर चली गई, हमारे यहां चिंता मिट गई। भगवान से तो एक ही बात कहो, हे भगवान आपके अंदर जो अपार शांति है वो शांति इस मरे हुए प्राणी को आप प्रदान करना, ज्यादा से ज्यादा इतना कहो बस। और मैं आपको समझाता हूं कि एक मुसाफिर खाने में सब लोग इकट्ठे होते हैं और अपने अपने समय के अनुसार चले जाते हैं, तो कोई भी किसी की चिंता नहीं करता। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक साथ बहुत से भाई लोग यात्रा करते हैं, उनमें जिसका स्टेशन आता है उतर जाते हैं, तो शेष लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ गाड़ी खाली हो गई, अब अपने बैठे खूब भगवान का भजन ध्यान कीर्तन करेंगे। ऐसे ही घर का आदमी मर जाए तो समझो कि घर का रेल का डिब्बा खाली हो गया, उसका स्टेशन आ गया वो उतर गया, तो अपने को भी ऐसे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, इसलिए भजन ध्यान करना चाहिए। चाहे छोटा मरे चाहे बड़ा मरे, अपने अपने स्टेशन पर ही उतरते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब यदि कोई कहे कि स्त्री के लिए तो पति ही सबसे बढ़कर है और पति की आयु समाप्त हो गई तो पति मर गया, युवावस्था में विधवा हो गई, बहुत दुख की बात है, ऐसी अवस्था में हम क्या करें महाराज, तो सबसे पहले ये विचार करो कि कोई भी मरता है तो क्या वो भगवान के आंखों से अलग होकर मरता है क्या, भगवान की इच्छा के बिना मरता है क्या, भगवान की दृष्टि में मर रहा है, भगवान की इच्छा से मर रहा है, भगवान के सामने मर रहा है, ऐसी स्थिति में भगवान का भगवान पर हम हुक्म लगा सकते हैं क्या, भगवान के हुक्म से ही तो वो मरता है, भगवान के ऊपर हमारा हुक्म क्या चलेगा, तो उस समय यही सोचना चाहिए कि भगवान की मर्जी है, भगवान का हुक्म है, भगवान के सामने मरे हैं, भगवान की इच्छा से मरे हैं। स्त्री को ये समझना चाहिए कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है कि वे अब मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई कहे कि ऐसी दया समझ में नहीं आती है जिसमें बिचारी स्त्री उम्र भर रोती रहे, समझ में नहीं आती है, तो कैसे दया समझे। तो देखो, परिवार मिलता है, रुपया मिलता है, पुत्र मिलता है, पति मिलता है, स्त्री मिलता है, पदार्थ स्त्री मिलती है, पदार्थ मिलते हैं, तो ये भगवान की दया है। और यदि वे मर जाते हैं चले जाते हैं तो भगवान का कोप समझते हैं, तो अच्छा ये समझो कि भगवान कब कोप करते हैं, जब कोई हमने पाप किया हो तो पाप का फल समझ लो। जब विचार करके देखो कि भगवान ने हमें स्त्री पुत्र धन मकान रुपया ऐश्वर्य दिया, ये तो साधारण दया है, कोई खास दया नहीं है, लेकिन वापिस ले लेते हैं तो ये विशेष दया है। देने में तो कम दया है और लेने में विशेष दया, अधिक दया है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पाप का भी नाश होता है, हमारा साधन भजन बढ़ता है और हमको ये ज्ञान होता है कि भाई ये क्या मरे, अब हमको भी ऐसे ही मरना पड़ेगा। यदि हमारा शरीर निरोग रहता है तो भगवान की दया कम है, ऐसा मानना चाहिए, और बीमार रहे तो समझना चाहिए कि अधिक दया है। क्या ये बात समझ में कैसे आए? तो समझ में यूं आए कि जैसे अभी हमने बताया स्त्री पुत्र मान बढ़ाई आदि ये पुण्य का फल है, तो इतने दिन तक तो हमारा पुण्य भगवान के पास सुरक्षित था, उन्होंने अनुकूलता दे करके हमारे पुण्य को तो मिटामेट कर दिया, तो ये तो कमी दया हुई। और यहां हमसे वापिस छीन लेते हैं तो वो हमारे पाप का फल है, तो ये पाप मटिया मेट हुआ, तो पाप का मिटिया मेट होना बड़ी चीज है कि पुण्य का मिटिया मेट होना बड़ी चीज है। इसलिए ऐसी अवस्था में घबराना नहीं चाहिए। और भगवान तो हमारे पाप पुण्य का खाता बराबर करके अपने उद्धार की तरफ ले जाना चाहते हैं, और हम लोग मरे हुए प्राणी के लिए शोक करते करते रोते चिल्लाते भगवान के विधान से भगना चाहते हैं, ये हमारी गलती है। बड़ा लेख है, आज इतना ही होगा।